ناظرین السلام علیکم، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے. ہمارا ای میل ایڈریس ہے andaz_jahan@sahartv.ir اور ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahartv.ir. اور انداز جہاں میں آج ہم گفتگو کریں گے یوم الارض فلسطین کے بارے میں. تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں. ناظرین، جمعہ 30 مارچ کو یوم الارض فلسطین کی مناسبت سے غزہ، غرب اردن، فلسطین کے مقبوضہ علاقوں لبنان، مصر، اردن سمیت دنیا کے 80 ملکوں میں مظلوم فلسطینی قوم کی حمایت میں مظاہرے کیے گئے. مظاہروں کے دوران غزہ پٹی اور غرب اردن میں اسرائیلی فوجیوں کی فائرنگ میں کم سے کم 1 فلسطینی شہید اور 300 سے زائد زخمی ہو گئے. اس بار یوم الارض کی ایک خاص بات یہ رہی ہے کہ یوم الارض کی مناسبت سے مقبوضہ فلسطین کی سرحدوں کے قریب مظاہرہ کرنے کے لیے دنیا بھر سے سینکڑوں امن کارکن پہنچے تھے، جنہوں نے فلسطینی عوام کی آواز میں آواز ملا کر فلسطین کی تمام سرزمینوں اور تمام علاقوں کی آزادی کا مطالبہ کیا اور بیت المقدس کو فلسطین کا دائمی دارالحکومت قرار دیا. اسی کے ساتھ ہندوستان، پاکستان اور یورپی ملکوں میں، خود امریکہ کے اندر بھی یوم الارض فلسطین کی مناسبت سے عظیم الشان مظاہرے ہوئے. تو آئیے چلتے ہیں لندن اسٹوڈیو، جہاں بر صغیر کے ممتاز دانشور علی جعفر زیدی صاحب موجود ہیں. ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. زیدی صاحب، السلام علیکم جناب.
جی وعلیکم السلام.
زیدی صاحب، اس سال یوم الارض فلسطین کے موقع پر یورپ اور خود انگلینڈ میں مظاہروں کی کیفیت کیا رہی ہے؟
جی، یہ جو یوم الارض منایا گیا ہے، یہ 36واں یوم الارض ہے
جی.
اور اس میں جو شمولیت ہے وہ مارچ، گلوبل مارچ ٹو یروشلم کے حوالے سے کینیڈا، برطانیہ، امریکہ، یونان، روس، دنیا بھر کے ممالک سے اس میں شرکت کی گئی، اور سب نے اسرائیل کے اگینسٹ اس کے بارڈرنگ علاقوں میں جا کر اپنی یکجہتی کا اظہار کیا فلسطینیوں کے ساتھ. اور اسی طرح سے برطانیہ میں بھی جلوس برآمد ہوئے اور یہاں پر بھی میٹنگز ہوئیں، جس میں یہاں پر صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ عیسائی اور یہودیوں نے بھی اس میں شرکت کی. بعین ہی وہاں پر اس یوم الارض کے مظاہرے میں جو ربائی ہیں، آپ وہاں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ لبنان میں اور جارڈن میں جو ربائی ہیں، حتیٰ کہ فلسطین کے شمالی، جو فلسطین میں اور اسرائیل کے شمالی اسرائیل میں، وہ یہودی جو کہ اسرائیل کی ریاست کے خلاف ہیں، اس کانسیپٹ کے خلاف ہیں، جو صہیونیت کے خلاف ہیں، انہوں نے بھی ان مظاہروں میں شرکت کی. اور اسرائیل کے جو ظالم اور مجرم حکمران ہیں، انہوں نے ان نہتے مظاہرین پر گولیاں بھی چلائیں اور ان کو اپنا نشانہ بنایا، جس میں جیسے آپ نے فرمایا 300 سے زائد لوگ زخمی ہیں اور 1 کو شہید کیا گیا ہے. مگر اس سارے معاملے میں یہ آواز گریجولی بڑھتی جا رہی ہے، کم نہیں ہو رہی ظلم و تشدد کے باوجود. اس کی کئی ریزنز ہیں، और इमीडिएट रीज़न तो ये है कि ये जो अरब स्प्रिंग है इसने फ़लस्तीनियों को एक नया अज़्म और नया हौसला दिया है, और उसके साथ साथ वो मीडिया जो बिल्कुल दुनिया भर में फ़लस्तीनियों की आवाज़ को उठाने से कासिर था, जो कि शाम और इजिप्ट में मुजाहरे होते हैं तो उनको रोज़ उस पर डिस्कशन भी हैं और उन पर प्रोग्राम्स भी नशर होते हैं, वो मीडिया भी अब मजबूर है कि वो थोड़ी बहुत कवरेज भी करता है और उस पर गुफ्तगू भी मगरबी मीडिया अब कर रहा है। तो ये प्रेशर जो है इसको अब रोकना मुश्किल होगा, और दुनिया में जो अमरीकी साम्राज्य के जो फॉरेन पॉलिसी है जिसमें यूरोप भी शामिल है उसके खिलाफ अरब ममालिक के अवाम बिलखसूस उसके खिलाफ बेहद नफरत रखते हैं और उसके खिलाफ जद्दोजहद में अब वो शामिल होते जा रहे हैं। चुनाचे इस आवाज़ को और इस जद्दोजहद को रोकना अब इनके लिए बहुत मुश्किल है, और इज़राइल की ये जो गोलियां हैं और जुल्म है इसके नतीजे में जो जद्दोजहद है वो मजीद बढ़ती नज़र आ रही है, उससे सप्रेशन जो है वो करना मुश्किल है और इस आवाज़ को दबाना बहुत मुश्किल है।
बहुत बहुत शुक्रिया जैदी साहब। और नाज़रीन, हमारे दिल्ली स्टूडियो में हिंदुस्तान के सीनियर सहाफ़ी और मुमताज़ तजिया निगार शकील शमसी साहब मौजूद हैं। शमसी साहब अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।
शमसी साहब, इस साल यौमुल अर्ज के मुजाहिरों में जोश खरोश ज्यादा देखा गया, खुद हिंदुस्तान के मुतअद्दिद शहरों में इस दिन मुजाहरे हुए और बड़ी तादाद में रिपोर्ट के मुताबिक गैर मुस्लिम अफराद ने भी इसमें शिरकत की, इसकी वजह क्या हो सकती है ये जो जोश व खरोश ज्यादा होने की?
देखिए, इस बार मुझे भी बहुत हैरत है। 1978 का वाकया है, यौमुल अर्ज मनाया जा रहा है उस वक्त से अब तक, लेकिन मुझे खुद बहुत हैरत है कि इतने बड़े पैमाने पर हुआ यहाँ हिंदुस्तान में, और शहरों शहरों में और गांव करिए से खबरें आई हैं कि या तो एहतजाजी जलसे हुए या मुजाहरे हुए। लखनऊ में बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ, दिल्ली में बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ और बड़े बड़े शहरों में मुजाहरे हुए, लेकिन छोटे छोटे करिए और कस्बे में भी इस बार यौमुल अर्ज के सिलसिले में एक नई गूंज दिखाई पड़ी, और उसमें गैर मुस्लिमों ने भी साथ दिया, और जाहिर बात है कि हिंदुस्तान के गैर मुस्लिम फिलिस्तीनियों का बराबर साथ देते रहे हैं, और यहाँ एक बड़ा तबका है जो फिलिस्तीनियों की हिमायत करता है। लेकिन ये मेरी याददाश्त में पहली बार ऐसा हुआ है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि हिंदुस्तान में यौमुल अर्ज के मौके पर इतनी बड़ी तादाद में मुजाहरे हों और इतनी बड़ी तादाद में लोग निकल कर आए। ये बहुत एक खुशायन तब्दीली है यहाँ के लोगों में, जो बेदारी आ रही है मुसलमानों में, और उसकी शायद एक सबसे बड़ी वजह मैं आपको बताऊं वो ये है कि इधर यहाँ के अवाम को महसूस हो रहा है, हिंदुस्तान के अवाम को महसूस हो रहा है कि इसराइल हिंदुस्तान के दाखिली उमूर में बहुत ज्यादा मुदाखलत कर रहा है, और इससे मुसलमान यहाँ के बहुत नाराज हैं, और इस पर बराबर सदा एहतजाज बुलंद की जा रही है मुसलमानों की जानिब से कि इसराइल जो है वो यहाँ पर यहाँ के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत ना करे। शायद इसका भी एक इजहार था, एक एहतजाज था जो निकलकर बाहर आ रहा है लोगों में, और यकीनी तौर पर इसराइल को सोचना पड़ेगा कि वो अपने मजालिम जो है उनको कहां तक ले जाएगा, क्योंकि अभी तक जो वो गुमराह करते आए थे कि ये अरब और फिलिस्तीनियों का झगड़ा है वो खत्म हो गई बात, अब ये सहूनियत वर्सेज इस्लाम झगड़ा है, ये बात बिल्कुल तय हो गई यौमुल अर्ज के मौके पर, और एक बहुत अच्छी बात है, और इससे फिलिस्तीनी कॉज को बहुत ज्यादा उनमें एक मजबूती मिलेगी, और मुझे यकीन है कि ये बहुत जल्द ये सिलसिला और आगे बढ़ेगा, और मुसलमान जिस तरीके से बयान दे रहे हैं और जिस तरीके से जलसे हो रहे हैं उससे लगता है कि ये मामला थमेगा नहीं, और इसराइलियों को अपने मजालिम की कीमत अदा करना पड़ेगी।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, टेलीफोन लाइन के जरिए हमारा राबिता बरकरार हुआ है पाकिस्तान के एक मुमताज दानिशवर और सीनियर तजिया निगार ओरिया मकबूल जान साहब से। ओरिया मकबूल जान साहब अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह।
जी ओरिया मकबूल जान साहब, यौमुल अर्ज की अहमियत क्या है?
असल में यौमुल अर्ज की जो बुनियादी अहमियत जो है बाकी सारे मामला में तो और असल जगह है, ये फिलिस्तीन के अवाम ने जो कि वहां के रहने वाले मुसलमान थे उन्होंने फिलिस्तीन के हवाले से अपनी जो जो सुखद बालफोर एग्रीमेंट के बाद वहां पर आबादियां वहां पर आना शुरू हुई थी यहूदियों की, तो उसके खिलाफ जो है एक एहतजाज रजिस्टर किया था और उसकी बुनियाद पर फिलिस्तीन को अपनी एक जमीन को अपना हक के तौर पर तस्लीम करने के लिए आवाज उठाई थी। उसको उसकी वजह से फिलिस्तीन को जो इनहेरेंट राइट है उसको एस्टेब्लिश करने के लिए वो जो बात की थी उसको मोहम्मद हक मनाया जाता आज के हवाले तक
जी। और ये मकबूल जान साहब लाइन पे मौजूद रहिएगा। जैदी साहब, ये इस बार जो बहुत ही वसी पैमाने पर पूरी दुनिया में यौमुल अर्ज़ के मुजाहरे हुए हैं, हिंदुस्तान में शकील शमसी साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहजा फरमाई होगी, हर बड़े शहर में मुजाहरे हुए हैं और हत्ता छोटे कस्बों से भी इस दिन प्रोग्रामों की रिपोर्टें मिली हैं, मुजाहरे हुए हैं, जलसे हुए हैं, और इसी तरह से दुनिया के दीगर मुल्कों में 80 मुल्कों में इस दिन मुजाहरे किए गए। ये जो इतने वसी पैमाने पर इस साल मुजाहरे हुए हैं, तो क्या आप ये समझते हैं कि इसकी वजह सिर्फ अरब मुल्कों में जारी इस्लामी बेदारी की तहरीक है या इसकी और भी वजूहात हैं?
जी, जैसे मैंने पहले इशारा किया कि जो इस वक्त अमेरिका और उसके जो इत्तेहादी हैं उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है तीसरी दुनिया के ममालिक बिलखसूस मुस्लिम ममालिक चंद उन बादशाहतों को छोड़कर जहां पर इनके अपने हवारी मौजूद हैं, तो इनकी जो ये फॉरेन पॉलिसी है उसके अगेंस्ट मुसलमानों के अवाम की अक्सरियत का ये एक रद्द अमल है। और ये आपको यौमुल अर्ज़ के अलावा भी नज़र आएगा, जहाँ जहाँ अमरीकी साम्राज्यत के खिलाफ और उसके मजालिम के खिलाफ कोई भी जलसा जुलूस प्रोग्राम होता है, अब उसमें शिरकत मुसलमानों की बढ़ती जा रही है, न सिर्फ बरे सगीर के इलाके में बल्कि यूरोप के ममालिक में भी। और वो जुल्म जो के इसराइल ने फलस्तीनियों पर एक मुद्दत से रवा रखा हुआ है वो दुनिया के सामने अब उजागर हो रहा है, बिलखसूस अमेरिकन जो पॉपुलेशन वहाँ के जो आम अमेरिकन आम आदमी है जो कि वहाँ का लोकल मीडिया का प्रिजनर है, उस बेचारे को वहाँ की दुनिया का इलाके अपने इलाके से बाहर की दुनिया का कुछ पता नहीं होता। तो अब दुनिया में ये जो बेदारी है ये सिर्फ इस्लामी बेदारी मिडल ईस्ट की ही नहीं बल्कि दुनिया में अमरीकी हथकंडों के जो नताइज हैं और उसकी जो इफेक्ट्स हैं फाइनेंशियल, जब उसका बोझ अमरीकी अवाम पर भी पड़ रहा है, यूरोप के अवाम पर भी पड़ रहा है, और जो ही ये धमकी देते हैं ईरान पर हमला करेंगे और यहाँ 4 पैनी और फिर 10 पैनी 20 पैनी पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाती हैं, तो उसका जो बोझ है वो आम आदमी तक जा रहा है और वो इस वक्त अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के बेहद खिलाफ हैं। दूसरा ये कि वो सरजमीन जो कि अलर्जो लिल्ला जमीन तो खुदा की है, उस पर इसराइल के जो मुजरिम हुक्मरान हैं उन्होंने इस तरह कब्जा किया है कि और ऐसी पॉलिसी बनाई है कि वहाँ पर फलस्तीनी वो ज़मीन नहीं ले सकते और वहाँ का जो अरब इसराइली अरब है पुराना वो भी वो ज़मीन नहीं ले सकता। तो ये डिस्क्रिमिनेशन है इतनी बड़ी जो हमें साउथ अफ्रीका में अपार्थाइट की जो रिजीम थी उसमें नज़र आती थी। तो इसराइल की ये हुकूमत की जो अपार्थाइट पॉलिसीज हैं ये पहले एक्सपोज्ड नहीं थी। अब दुनिया को ये भी पता चल रहा है कि यहाँ पर रहने वाले लोग जो फलस्तीनी हैं या अरब इसराइली अरब हैं उनको इसराइल की ज़मीन पर कोई हक नहीं है सिवाय यहूदी जो वहाँ पर आकर बस रहे हैं उनके। चुनाचे ये ऐसी डिस्क्रिमिनेशन है कि जिस पर आलमी इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हैं उनमें भी एक तरह का एक रद्द अमल है। और ये एक वो हुक्मरान जो कि यूरोप और अमेरिका के बिलखसूस जो इंसानी हकूक़ की अलमबरदारी के दावेदार हैं वो न सिर्फ इस एक्सप्लाइटेशन के इस डिस्क्रिमिनेशन के पर खामोश हैं बल्कि उनके मुंह से एक भी कलमा हक फलस्तीनियों के हक में नहीं निकलता। तो ये जो सूरत हाल डेवलप हुई है सिर्फ इस्लामी इस तहरीक मिडल ईस्ट में जो तहरीक है उसी की वजह नहीं है, बल्कि इसमें इंसानी हकूक और जो इंटरनेशनल प्रिवेलिंग लॉ रहे हैं अनरिटर्न या रिटर्न, उसकी इतनी ज्यादा वो मनफी की जा रही है कि उस पर अब पूरी दुनिया बेदार है और रिएक्शन बड़ा स्ट्रांग है।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया शमसी साहब। जनाब यौमुल अर्ज पर यकीनन हिंदुस्तान में ज्यादा वसी पैमाने पर मुजाहरे हुए और पूरे हिंदुस्तान में इस सिलसिले में प्रोग्राम किए गए, और इसमें जैसा कि आपने इशारा किया है कि खुद हिंदुस्तान के अंदर जो इसराइल की मुदाखलत है उसके खिलाफ नफरत और गुस्से का इजहार भी शामिल रहा है, लेकिन आप देखें कि पूरी दुनिया में इस सिलसिले में इस साल यौमुल अर्ज के मौके पर पूरी दुनिया में ज्यादा जोश व जज्बा पाया गया है, और इस साल यौमुल अर्ज पर दुनिया के पांचों बर्रे आजम से अमन कारकुन ग्लोबल मार्च टू बैतुल मुकद्दस के नारे के साथ मकबूजा फलस्तीन के पड़ोसी मुल्कों में पहुंचे और उन्होंने वहां पर मुजाहरे किए। ये जो सूरत हाल है कि पूरी दुनिया में, अमरीका में, अफ्रीका में, यूरोप में, एशिया में, एशिया के तमाम मुल्कों में ये जो बेदारी पाई जा रही है फलस्तीन के ताल्लुक से, इसका आमिल क्या है?
जी देखिए, इसका आमिल एक ही है, इसकी वजह सिर्फ एक ही है, और वो ये है कि जो मजालिम है इसराइल के और अमेरिका की जो पॉलिसियां हैं पूरी मिडिल ईस्ट में। मैं यहां पर आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि यौमुल अर्ज जो है, आपने से पहले मेरे पेशवा मुकर्रर से बात भी की थी और उनसे पूछना चाहता कि यौमुल अर्ज है क्या। असल में हमारे अभी तक बहुत से लोगों को तो यह मालूम भी नहीं था, खुद यहां हमारे बड़े सगीर में नहीं मालूम था लोगों को कि क्या है यौमुल अर्ज। असल में 1920 से ही इसराइल ने दहशतगर्दी के जरिए से अरबों को बाहर करना शुरू किया था और वो अपनी जमीनें छोड़ छोड़ के डर डर के भागे थे, जो वाकयात तारीख में लिखे हैं कि किस तरीके से खेतों में घुसकर और देहातों में घुसकर इसराइली दरिंदों ने, इसराइली दहशतगर्दों ने उनको निकालना शुरू किया। उसके बाद 1948 की लड़ाई में बहुत से मुसलमान वहां से भागने पर मजबूर हुए। उसके बाद 1967 की जंग में जब बहुत बड़ी फतुहात हासिल हुई इसराइल को, उस वक्त बड़ी तादाद में मुसलमान भाग कर गए, तो उनमें से बहुत से लोग ऐसे थे कि जिनकी जमीनें, और जहां जहां से मुसलमान भागे वहां पर इसराइल ने अपने लोगों को बसा दिया या उन पर कब्जा कर लिया, वो उनका मंशा यही था। और इसी तरीके से जब 1967 की जंग के बाद वहां से मुसलमान भागकर अर्दुन में पनाहगजी हुए या दूसरी जगहों पर गए, तो उनकी जमीनें जो थी उसकी निगहदारी कुछ लोगों ने दे रखी थी वहां के मकामी लोगों को, जिस पर वो ज़राअत करते थे, काश्तकारी करते थे, और वो बटाई पर या ठेके पर उनके पास वो जमीन थी और कुछ हिस्सा वो उन लोगों को देते थे जिनकी जमीनें थी। इसराइल की हुकूमत ने क्या किया कि वो जो लोग थे उनको वहां से महरूम करने के लिए, जो काश्तकार थे उनको वहां से निकालने के लिए, उन जमीनों पर ये कब्जा करके किया कि ये जमीनें छोड़कर लोग चले गए हैं तो इन जमीनों पर हक हमारा है और हम इस पर अपनी कॉलोनियां बसाएंगे। उसके बाद वहां के मुसलमानों ने एहतजाज किया, और जब एहतजाज किया तो उस पर फायरिंग हुई और उसमें कई लोग आपको मालूम है जख्मी हुए और बहुत से लोग मारे गए उसमें। तो ये यौमुल अर्ज था, लेकिन अभी तक ये ईरान के इनकलाब से 11-12 महीने पहले की वाकया है। उसके बाद फिर उस वक्त तक सब उसको अरब और इसराइल जंग कहा करते थे, लेकिन जब मरहूम आयतुल्लाह उज़्मा इमाम खुमैनी ने कहा कि नहीं, ये इस्लाम और सहूनियत की जंग है और ये मुसलमानों का मामला है, इसराइल के साथ लड़ाई फिलिस्तीनियों का मामला नहीं है, तो सूरत हाल बदली और धीरे धीरे लोगों के समझ में आने लगा कि हमारी लड़ाई किससे है और हम भी उसका एक हिस्सा है। तो ये धीरे धीरे ग्लोबल पूरी एक लोगों में एक बेदारी आई है, और वही सिलसिला है जो चल रहा है और जिसका समरा इस बार देखने में मिला, क्योंकि इस बार ये जो ग्लोबल मार्च का एहतमाम किया गया था जिसमें हमारे हिंदुस्तान से भी कई लोग गए हैं शरीक हुए, उन लोगों ने भी जब वो चले हैं तो यहां से राजघाट से शुरू किया, राजघाट पर काफी पब्लिसिटी हुई उसकी, उससे लोगों को मालूम होता गया। इस यकीनन इस ग्लोबल मार्च ने बहुत लोगों को बेदार किया और इसके नारे ने, क्योंकि रोज इसके बारे में खबरें अखबार में छपती थी कि फुला मुल्क से लोग जा रहे हैं, इस मुल्क से लोग जा रहे हैं, हिंदुस्तान से जो लोग जा रहे हैं उन्होंने आज मार्च किया इस शहर में, दूसरी जगह मार्च किया, इस तरीके से काफी पहले से उसके लिए पेशबंदी की गई। और वो जब पाकिस्तान पहुंचे और जब ईरान की सरहदें पार किए और इस तरीके से जब वो जॉर्डन तक पहुंच गए और वो मिस्र तक पहुंच गए, तो ये सारी बातें यहां अखबारों में आती रही जिनकी वजह से भी काफी वो हुआ एक पूरे। और दूसरी बात यह कि जो अमरीकी मजालिम हैं, जो अमरीकी पॉलिसीज हैं, उनके तहीं बहुत बेदारी आई है मुसलमानों में, और उनके समझ में आ रहा है कि इसराइल अपने आप में कोई ताकत नहीं है, इसराइल अपने आप में कोई चीज नहीं है, ये तमाम कर जो वो अकड़ता है, जो उसकी हेकड़ी है, ये सिर्फ अमरीका के बलबूते पर है और अमरीका उसको शह देता है, अमरीका ही की वजह से वो मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है और इसी वजह से लोगों में एक बेदारी आ रही है क्योंकि वो देख रहे हैं कि अमरीकियों की पॉलिसी क्या है। वो अब अमरीकी मजीद बेवकूफ नहीं बना सकते कि शाम का हुलुला मचाओ, शाम में ये हो रहा है और हुलुला मचाओ और बहरीन में मामले में एकदम खामोशी घसीट लो, अर्जुन में जो कुछ हो रहा है, यमन में जो कुछ हो रहा है उसका खामोशी कर लो। तो आवाम इतने बेवकूफ नहीं है जितना अमरीका समझता है। तो ये एक निकलकर आवाम की जो जहनीयत बदली है, जो एक अमरीका के साथ मुसलमानों की दुश्मनी का रुझान पैदा हुआ है या जो उसकी मुखालिफत का रुझान पैदा हुआ है, उसका गम्माज है ये पूरा जो पूरा किसे यौम अर्ज बनाया गया है।
बहुत बहुत शुक्रिया। और यह मकबूल जान साहब आप लाइन कर रही हैं जी। अली जाफर जैदी साहब, जनाब दुनिया भर के अवाम में मसले फलस्तीन के ताल्लुक से बेदारी पैदा करने में ग्लोबल मार्च टू बैतुल मुकद्दस का किरदार क्या है?
जी बेहद अहम है, जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि ये जो ग्लोबल मार्च टू यरूशलम की हवाले से जब यहाँ यूरोप में गुफ्तगू शुरू हुई, तंजीमों ने मीटिंग शुरू की इस मार्च में शमूलियत के लिए, हैंड बिल्स और इंटरनेट और ट्विटर और फेसबुक के जरिए, तो ये बात आहिस्ता आहिस्ता चंद ये एक दिन में नहीं हुआ, कई महीनों से जो तंजीमें थीं वो इसकी तैयारी कर रही थीं और उससे फिर बेदारी बढ़ती गई और इसमें फिर लोग शामिल हुए। शमूलियत के अलावा एक और पहलू जो कि अहम है वो ये कि फलस्तीन के मसले को यूरोप का आम आदमी अभी तक नहीं समझ पाया था पिछले चंद साल पहले तक। उसके नज़दीक जो सहूनियत का प्रोपेगेंडा है और चूंकि यहाँ के मीडिया पर अक्सरियत मीडिया की अक्सरियत पर ज़ायनिस्ट फोर्सेस का कब्जा है, तो वो अपने इस मसले को, फलस्तीन के मसले को अपने खिलाफ जाहिर है वो सामने एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे। तो यहाँ का जो आम शहरी है यूरोप का, उसके सामने फलस्तीन का मसला ऐसे नहीं था जैसा कि एग्जिस्ट करता है, बल्कि यहूदियों की ही उस पर जो किए गए मजालिम और हिटलर और वो सारा और वो करते करते, हालांकि उसमें फलस्तीनी बेचारों ने तो एक यहूदी भी दूसरी जंग अजीम में नहीं मारा था, मारा तो हिटलर ने था। तो बहरहाल ये वेस्ट का जो प्रोपेगेंडा है उसके नतीजे में फलस्तीन के बारे में बहुत ज़्यादा यहाँ के आम आदमी के इल्म में बातें कम थी, लेकिन जब से ये अरब स्प्रिंग आया, उसके बाद जद्दोजहद शुरू हुई और फिर डिस्कशन शुरू हुई कि ये आर्थर जेम्स बालफोर का जो 1917 का डिक्लेरेशन था वो क्या था, इज़राइल किस तरह से कायम हुआ, इसको जो थियोडोर जो जर्नलिस्ट था, उस जो ऑस्ट्रो हंगेरियन जर्नलिस्ट था, 1896 में उसने ये तसव्वुर दिया था कि इज़राइल यहूदियों की अपनी एक रियासत होनी चाहिए और वो फलस्तीन में होनी चाहिए, और उसके बाद फिर ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनी थी यूरोप में जिस पर बालफोर ने, जो उस वक्त फॉरेन सेक्रेटरी था बरतानिया का, उसने ये डिक्लेरेशन डिक्लेयर किया था बादशाह वक्त जो बादशाह था बरतानिया का उसकी तरफ से कि हम इज़राइल की फलस्तीन में रियासत के क़याम के लिए पूरी सपोर्ट भी करेंगे और उनकी जद्दोजहद में उनकी हौसला अफजाई करेंगे। तो ये जब बहस शुरू हुई है, ये सब्जेक्ट सामने आया है, तो यहाँ के लोगों के सामने ये मसला खुलना शुरू हुआ कि फलस्तीनियों के जो असल हकूक थे, उनकी जो ज़मीनें थीं, उनकी जो अपनी आज़ादियां थीं, उनका इलाका था, उस पर किस तरह यहूदियों की रियासत बनाने के हवाले से कब्ज़ा शुरू हुआ। और फिर ये बहुत वाज़े क्लियर कट डिक्लेरेशन है अनरिटर्न इज़राइल की जानिब से कि ये एक, बल्कि इसका इजहार उन्होंने बारहा किया है कि कि इसराइल एक यहूदी रियासत होगी जिसमें इसी वजह से ना वो कोई दो रियासती मंसूबा मानने को तैयार हैं, ना एक रियासती मंसूबा मानने को तैयार हैं। मुसलसल जो सेटलमेंट्स हैं उस पे उनके एक्शंस जारी हैं और बस्तियां वो यानी फलस्तीनियों के ज़मीनों पर कब्जा करके और वो बस्तियां यहूदियों की बनाए जा रहे हैं। तो और उसमें उन्होंने डिक्लेयर ये किया हुआ है कि हम ये रियासत जो होगी इसराइल की ये यहूदी रियासत होगी। अच्छा, वो जब यूनाइटेड नेशन में जाते हैं तो कुछ और स्टैंड लेते हैं, लेकिन असल जो उनका हदफ है वो ये है कि ये एक ज्यू स्टेट, ज्यूज की स्टेट होगी। अब उस हवाले से जो जुल्म है वो ये दुनिया के सामने आ रहा है कि साहब वहाँ जो अक्सरियत ना सही लेकिन मुसलमान वहाँ बसते हैं, ईसाई बसते हैं, वो यहूदी बसते हैं जिनकी पुराने वो अरब इसराइली अरब हैं, उनके हकूक को एक ज़ायनिस्ट हुक्मरान किस तरह सलब कर सकते हैं। तो ये चीज़ें पहले दुनिया पर वाज़े नहीं थीं, अब खुलना शुरू हुई, उस पर बात शुरू हुई, मीटिंग शुरू हुई और इनका जो शऊर है वो थोड़ा सा बुलंद हुआ और पूरे फिर यूरोप में, जैसे पहले मैंने बात की है उसको रिपीट करूँगा कि ये जो इसराइल अमेरिका और यूरोप का गठजोड़ है और इसके पीछे ज़ायनिस्ट एवेंजेलिक चर्च और न्यू कॉन्स इसके पीछे उनके ताने बाने तो उनके हाथ में हैं, तो जो पेंटागन से पॉलिसीज बन रही हैं मिडल ईस्ट में इसराइल के हक में, फलस्तीनियों के खिलाफ मजालिम और उसके साथ साथ आंखें बंद करना यमन के मामले पर, बहरेन के मामले पर, तो ये दुनिया के सामने अब इतना खुल रहा है कि उससे एक रद्देमल के तौर पे लोग जालिम के खिलाफ मजलूम के हक में जमा होना शुरू हो गए हैं और ये इजाफा हो रहा है इस कुव्वत में, इस सोच में, इस शऊर में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है और इसको रोकना बहुत मुश्किल है। क्योंकि असल, जैसे मैंने कई बार पहले कहा कि असल जो ताकत है वो अवाम की होती है और इस इलाके के अवाम ने, मैं समझता हूँ और दुनिया भी यहाँ की ये समझती है कि इसराइल के अवाम एक ज्यू स्टेट नहीं चाहते, एक ज़ायनिस्ट रियासत नहीं चाहते। यहाँ के यहूदी भी, जो यहूदी हैं ज़ायनिस्ट नहीं हैं, वो भी इसराइल को बतौर एक ज़ायनिस्ट रियासत नहीं देखना चाहते। चुनाचे शऊर की जो ये एक शऊर पैदा हुआ है उसका नतीजा है और उसका इजहार है कि आपको नज़र आता है कि पूरे यूरोप से, अमेरिका से, एशिया से, अफ्रीका से, आज ये जो लैंड डे है यौमुल अर्थ, वहाँ पर सब तरफ से लोग गए हैं, तकरीरें की हैं, शामिल हुए हैं और फलस्तीनियों के साथ अपनी यकजहती का इजहार किया है।
बहुत बहुत शुक्रिया जी। और ये मकबूल जान साहब, आप लाइन पर हैं जनाब?
जी जी लाइन पे हूँ जी।
जी जनाब, ये ग्लोबल मार्च टू बैतुल मुकद्दस के बारे में आपकी राय क्या है?
देखिए, मसला सारा ये है कि इसराइल जो था और खुद ज़ायनिज़्म की ने बड़ी खूबसूरत तारीख बयान की। इस ज़ायनिज़्म ने बेसिकली तीन एजेंडे 1896 में तय किए थे कि हम तीन चीजें जो हैं ये दुनिया की अपने हाथ में लेंगे। एक हम लेंगे इकोनॉमी थ्रू बैंक, दूसरी हम लेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी और तीसरी हम लेंगे मीडिया। इस मीडिया की हैसियत से उन्होंने पूरी दुनिया को कंट्रोल किया हुआ था और एक ऐसा इमेज बनाया था कि एक सदियों से हमें मार खाते आ रहे हैं, हम दुनिया में सबसे भारत हॉलोकॉस्ट के हमारे ऊपर हुआ है, ये हुआ है, और उस तरह दुनिया को एक एक ऐसी तरफ दे कहते कि जहां पर आके उन्होंने वहां पर इसराइल की रियासत तस्लीम कर ली थी। शुरू शुरू में एग्रीमेंट होते रहे कि नाइजीरिया में जाना चाहते हैं लेकिन प्रॉमिस लैंड के ऊपर उनको आबाद किया गया। बहुत लंबी कहानी है, लेकिन यही मीडिया अब इनके खिलाफ खुद इस्तेमाल हुआ है। अब हैरान कन बात यह है कि जिस इंडिपेंडेंट मीडिया के हवाले से चलते थे उस मीडिया ने गुज़श्ता 10-15 साल के अंदर लोगों ने, बाकी सारी इंसानियत ने उसके अंदर से हकायक को जानना शुरू किया है। और उस हकायक के जानने की वो लहर है कि जिस लहर ने अरब स्प्रिंग पैदा किए हैं, जिस लहर ने अंदर यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर आम आदमी को ये सोचने पर मजबूर किया है कि इसराइली बुनियादी तौर पर काबिज हैं, जालिम हैं और उनको इम्प्लांट किया गया है। फोर्स करके भेजा गया है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उनको बकायदा वहां पर ताकत के जरिए उनकी बस्तियां बसाई गई हैं, लोगों को धकेला गया और जुल्म किया गया है। सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर ये प्रोटेक्टेड का जो इलाका था बनाया गया था उसका बर्तानिया का और फ्रेंच साथ मिल मिला के लेबनान की तरफ से, तो वहां पर इनको बिठाया गया। तो इस मीडिया ने, इस इंटरनेट ने, इस सोशल जो नेटवर्किंग है उसने एक ऐसा शोर पैदा किया है कि अब अगर एक जरा सा भी जुल्म होता है तो पूरी दुनिया के अंदर इसराइल के जुल्म की तस्वीरें जो है वो लोगों के घरों में पहुंच जाती हैं। यही वजह है कि गुज़श्ता दो तीन साल के अंदर एक अवेयरनेस पैदा हुई है और वो उस और इसराइल को एग्जैक्टली वो पैरेलल समझते हैं साउथ अफ्रीका का, कि जिस तरह साउथ अफ्रीका के अंदर एक पार्थिट गवर्नमेंट थी, साउथ अफ्रीका के अंदर एक ऐसी गवर्नमेंट थी कि जो जो नस्ल की बुनियाद पर होती थी, ये एक आइडियोलॉजी और एक सहूनियत की बुनियाद पर यहां पर मौजूद थी। यही वजह है कि इसराइल जो है वो बजात खुद उसकी कोई हैसियत नहीं, बल्कि उसने एक जो तवील अरसे के तहत अमेरिकन जो न्यू कॉन्स के जरिए और अमेरिकन थिंक टैंक के जरिए जो अमेरिकन पॉलिसी को कंट्रोल किया था और उसको एक अपनी कानूनी बनाया था उसकी पूरी की पूरी सियासत को, वो सियासत अब आवाम के सामने खुलना शुरू हुई है। यही वो मामला है कि जिसकी वजह से अर्थ डे जो इतना ज्यादा सेलिब्रेट हुआ है पूरी दुनिया के अंदर। यानी आप सोच नहीं सकते कि आज से 15 साल पहले लोग जो थे यूरोप के अंदर वो समझते थे कि इसराइल का अरबों का कोई बड़ा जाति का छोटा सा मसला है, ये कोई ऐसा मसला है नहीं। और जो नफरत जो थी वो पूरे यूरोप के अंदर मौजूद थी जिसे एंटी सेमाइटिज्म कहते हैं, उस एंटी सेमाइटिज्म को उन्होंने कर्ब किया था, उसके खिलाफ पाबंदियां लगा के, उसके खिलाफ कानून बना के, हॉलोकॉस्ट की गुफ्तगू नहीं हो सकती। वो अब एंटी सेमाइटिज्म जो है उसकी हिस्ट्री जो थी, जेनेटिक हिस्ट्री जो लोगों के अंदर मौजूद थी, वो दोबारा उठ रही है कि यहूदी जहां भी रहे हैं, खा रूस में रहे हैं, खा मिलान में रहे हैं, खा इटली में रहे हैं, खा स्पेन में रहे हैं, खा जर्मनी में रहे हैं, इन्होंने अपने ही मुल्क के खिलाफ साजिश की है, इन्होंने अपने ही मुल्क के खिलाफ उठने को गद्दारी की है, जिस वजह से लोगों की नफरत का हम बरदार बने हैं। इन्होंने लोगों के रिसोर्सेज को कब्जा करने की कोशिश की है, इन्होंने सूद के पूरे सिस्टम के इर्द गिर्द पूरी अशराफिया को लपेटा है, इवन के बादशाहों को मकरूज किया है और फिर उसके बाद उसकी इकोनॉमी को कब्जा किया है। तो ये वो सारी चीजें अब लोगों के सामने खुली हैं। यही वजह है कि आज यौमुल अर्ज जो है वो आज से 10 साल पहले वाली सूरत हाल में नहीं है। आज मीडिया उसको इग्नोर नहीं कर सकता, आज लोग उसको इग्नोर नहीं करते। टेलीविजन चैनल नहीं होंगे तो नेटवर्किंग पे बात आएगी, यूट्यूब पे आएगी, फेसबुक पे आएगी, ट्विटर पे आएगी, उसका लिंक्डइन में आएगी, सब जगह पे आएगी। यही वो वजह है कि आज इतनी ज्यादा अवेयरनेस जो है पूरी दुनिया के अंदर आई है।
जी और ये साहब एक सवाल हम आपसे और करना चाहेंगे कि ये जो अवेयरनेस पैदा हुई है, ये जो बेदारी फलस्तीन के तहत पैदा हुई है आलमी सतह पर, इसके पेश नजर यूरोप, अमेरिका और इसराइल का जो मुसल्लस है इसका एजेंडा उसका क्या होगा, इसके एजेंडे का क्या होगा?
देखिए एजेंडा तो उन्होंने 1896 में पहले ही तय किया था कि 100 ईयर के अंदर हम एक ऐसी आलमी ताकत का ख्वाब देखेंगे कि जिस ख्वाब के अंदर उनकी जो बेसिक रियासत है वो मदीना मुनव्वरा की मुकद्दस सरजमीन तक एनक्लेव करती है। अब खुद देखें कि उन्होंने सऊदी गवर्नमेंट जो है वो अमेरिका की टूटलिज गवर्नमेंट है, एक स्टूज गवर्नमेंट है। अगर आज अमेरिका की पुष्पनाई वहां से खत्म हो जाए तो सऊदी हुकूमत जो है वो चंद दिन भी वहां पर नहीं रह सकती। इसीलिए उसको बहरैन वाला क्राइसिस जब हुआ है तो उसको खास तौर पे कहीं इसके रूट्स आगे ना चल पड़े। एजेंडा वही है कि उसको हम बेस बना के इस मुस्लिम उम्मा के सारे रिसोर्सेज को कंट्रोल करें और इस ताकत को यहाँ पर मुस्लिम उम्मा के खिलाफ इस्तेमाल करें। यही वजह है कि 3-4 गवर्नमेंटें ऐसी हैं कि जो अमेरिका की नाक का बाल है। आप खुद सोचिए कि 60 बिलियन का असला वो बेचते हैं और बेचते किसको है, जो यूएई की गवर्नमेंट है, सऊदी अरब की गवर्नमेंट है, इसराइल की गवर्नमेंट है। ये तीनों एक नेक्सस बन जाते हैं इस पूरे इलाके के अंदर। अब लेकिन जो अपराइजिंग बनी है मिस्र के अंदर, ट्यूनिस के अंदर, मराकस के अंदर और उसके अल्जीरिया के अंदर, ये वो मूवमेंट्स हैं कि जिन मूवमेंट ने अब एक किस्म की उसकी उसका रास्ता रोकने के लिए पब्लिक को खड़ा किया है। अब मुझे वो दिन दूर नहीं है कि जब पब्लिक जो है वो सऊदी अरब और इन मुल्कों के अंदर भी उसी तरह उठेगी तो फिर अमेरिका इस तरह गोल है वहां।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया औरिया मकबूल जान साहब। शमसी साहब
जी फरमाइए।
जी जनाब, ये जो अमेरिका, यूरोप और इसराइल का जो मुसल्लस है, क्या आप ये समझते हैं कि इनके प्रोग्राम और इनके एजेंडे में कोई तब्दीली आ सकती है या अपने एजेंडे पर ये उसी तरह से बाकी हैं?
नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई तब्दीली आएगी इनके एजेंडे में, बल्कि साजिशें और गहरी होती जा रही हैं इन इस मुसल्लक की, जितनी भी साजिशें हैं उनमें मजीद गहराई आती जा रही है। और आप देखिए कि पूरी जो बहार अरब जो शुरू हुआ उसको हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है अमेरिका की तरफ से और CIA की जानिब से, तो कोशिश ये की जा रही है कि मिस्र में जो कुछ हुआ है उसका फायदा उठा लिया जाए, दूसरे तरीके से अपनी तरफ मोड़ लिया जाए, शाम को एक दूसरी तरफ ढकेल दिया जाए खाना जंगी में, ताकि वहां से तो जो बहार अरब के नाम पर जो कुछ शुरू हुआ था जिसकी इब्तदा ट्यूनिस से हुई थी उसको अमेरिका हाईजैक करने की कोशिश में है। और वो किसी भी हालत में देखिए जो इनका मकसद है इसराइल ग्रेटर, आखिर में इनका जो ख्वाब है वो ग्रेटर इसराइल है, और ग्रेटर इसराइल से कम पर इसराइल राजी नहीं होगा कभी। तो जाहिर बात है कि उसकी ग्रेटर इसराइल की जो सरहदें हैं वो नील से लेकर शत्तुल फरात तक हैं, तो आदमी सोच सकता है कि इनका मंसूबे क्या है, उससे तो ये बात नहीं आएंगे। लेकिन हमें ये लगता है कि इमाम खुमैनी ने जो फरमाया था कि अगर मुसलमान एक एक बाल्टी भी पानी फेंके इसराइल के ऊपर तो वो सैलाब में बह जाएगा, मुझे ये लगता है कि मुसलमानों ने बाल्टियां खरीदना शुरू कर दी हैं, और वो दिन भी दूर नहीं कि जब मुसलमान जो है वो पानी भर के और इसराइल पर फेंकने लगे, क्योंकि ये एक बेदारी की जो लहर आई है ये अब रुकने वाली नहीं। मुझको नहीं लगता कि ये यौमुल अर्ज आज यहीं पर खत्म हो गया और अब इसके बाद कोई गुफ्तगू नहीं होगी 30 मार्च के बाद, ऐसा नहीं है, बल्कि जो एक नफरतों का समंदर दिलों में पैदा हो गया है जालिम के खिलाफ वो जरूर कोई ना कोई रंग लेकर आएगा।
जी बहुत बहुत शुक्रिया। जैदी साहब आप क्या कहते हैं, ये ग्रेटर इसराइल का जो मंसूबा है क्या अमरीका यूरोप और मगरबी दुनिया के जो थिंक टैंक्स हैं वो अब भी ये समझते हैं कि इस पर अमल हो सकता है?
जी मैं नहीं समझता, यहाँ के जो बाशूर तबका है और थिंक टैंक्स हैं वो इसको बिल्कुल एक अनरियलिस्टिक बात समझते हैं। और ये अलग बात के जो ये तीनों बिलखसूस अमेरिका अपने प्लान बनाता रहता है लेकिन तारीख अपना रास्ता खुद एक इख्तियार करती है जो उसके प्लान से मुताबकत नहीं रखता। हमने वियतनाम में देखा इनके क्या प्लान थे और नतीजा क्या निकला, इनके हमने रिसेंटली देखा इराक में इनके क्या प्लान थे और इराक इनका ख्याल था चंद हफ्तों में इराक को हम कब्जा करके और उसके बाद सीधा ईरान जाएंगे और फिर पूरा इलाके पे कब्जा करेंगे। तो इनके पेंटागन की पॉलिसीज या प्लान्स हैं वो तो बनते रहते हैं और ऐसे बनते हैं जिसमें हकायक तो कभी होते ही नहीं, लेकिन जो ज़मीनी हकायक हैं वो अक्सर औकात अपना फ्यूचर का जो रास्ता है और तारीख अपना रास्ता खुद मुतय्यन करती है और उसके नतीजे में चीज़ें कोई और रुख इख्तियार कर लेती हैं। अब ये स्प्रिंग अरब स्प्रिंग का इन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये इस तरह की शक्ल बन जाएगी, इस वक्त वो इस कोशिश में है जैसे कि औरिया साहब ने कहा कि वो इसको या हाईजैक कर लें या इसका रुख मोड़ें, ऐसा रुख मोड़ें कि वो सऊदी अरब की तरफ ना बढ़ पाए और इनके जो वहाँ जॉर्डन में ना बढ़ पाए और इनके और जो एक आदि कतर ने ये एक मर्ज किया इन्होंने अपने वहाँ एक पालतू हुक्मरान, तो इस तरफ को ये जो स्प्रिंग है ये ना चल पड़े। अब वो इस फिक्र में है, जो प्लान्स हैं वो तो बहुत दूर की बात है और ग्रेटर इसराइल तो इम्पॉसिबल है। यहाँ के जो थिंक टैंक्स हैं, यहाँ के जो बाशऊर लिखने पढ़ने वाले लोग हैं वो तो इस जोक ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि दुनिया किसी और तरफ चल पड़ी है। आज की दुनिया जालिम और मजलूम के दरमियान तकसीम हो गई है, जालिमों का सरगना अमरीका है, मजलूमों की आवाज़ जुड़ना शुरू हो गई है और जालिम और मजलूम के इस टकराव में, और ये टकराव हमें थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है जो कि बढ़ेगा, तो इसके टकराव के नतीजे में ये ग्रेटर इसराइल तो क्या अमेरिका को अपनी फिक्र करनी चाहिए, इन द लॉन्ग रन ये अमेरिकी साम्राज्य एक जवाल पजीर साम्राज्य है, इम्पीरियलिज्म नीचे को जा रहा है, ये जंग कितने ट्रिलियन डॉलर लेकर इन्होंने इराक की जंग लड़ी और इनकी फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स कर गया, इकोनॉमिक सिस्टम कोलैप्स कर गया, इनके यहाँ गुर्बत का आलम यह है। अमेरिका एक बैंक्रप्ट कंट्री है, आज चीन अपने बॉन्ड्स वापस ले तो इनके पल्ले कुछ नहीं है, तो तो अजायम वो जो भी रखते हों, जो जो हकायक हैं वो बिल्कुल दूसरी तरह हैं। आज नहीं तो कल यहाँ का जो थिंक टैंक है वो तो ये इस जानिब सोचता है कि अमेरिका के अपने अंदर जो हैं वो रियासतें तकसीम होंगी, क्योंकि उनके उनके अपने अंदर इतना बड़ा तजाद है, माशी तजाद, कि उसका बोझ अमेरिका की इकोनॉमी, वहाँ का सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर उसको बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। इतनी डिस्पैरिटी, इतनी इनइक्वालिटी है। एक रियासत में एक जो खातून है वो 50 सेंट का बस का टिकट नहीं ले सकती, दूसरी रियासत में बिलियनर्स लोग हैं जो जिनके पास पैसे की। तो जब इतना बड़ा तजाद हो तबकाती और उसके साथ रियासती, जो वहाँ की स्टेट्स हैं उनमें एक बेहद गरीब रियासत है, एक बेहद अमीर, तो ये तजाद अपना रास्ता खुद इख्तियार करते हैं और फिर हमने देखा माजी में फिर मुल्क टूटते हैं। तो अजायम इनके जो भी हों, ग्रेटर इसराइल कर लें या कुछ भी रख लें, आजकल तो अब तो इसराइल को अपनी मुसीबत पड़ी हुई है, ग्रेटर इसराइल तो दूर की बात है। आज इसराइल इतना परेशान है जैसा कभी पहले नहीं था, और हमने रिसेंट माजी में देखा है कि वो इसराइल जो ये समझता था कि उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, जब हिज़्बुल्लाह के वहाँ लेबनान से मिसाइल गिरे हैं तो पहली बार उन्हें अंदाजा हुआ कि अच्छा इसराइल में भी मिसाइल गिर सकते हैं। तो इसराइल तो एक जवाल पजीर मुल्क है, अपनी बका का मसला है उसके, कहाँ का ग्रेटर इसराइल तो बहुत दूर की बात, ये इसराइल जो मौजूद है इसकी अपनी बका का इस वक्त मसला है। और अरब वर्ल्ड में जो अवाम उठ खड़े हुए हैं उनकी नफरतों का ये निशाना है, अगर इन्होंने अपनी पॉलिसीज चेंज ना की तो इसराइल का अपनी एग्जिस्टेंस बड़ी मुश्किल होगी, जिस तरह से सऊदी अरब के हुक्मरानों की एग्जिस्टेंस नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन है इन द नियर फ्यूचर, इसी तरह से उसके जो हाशिया बरदार हैं अमेरिका के उनकी बका बहुत मुश्किल है। तो इसराइल तो एक, आज अगर अमेरिका 18 बिलियन डॉलर हर साल उसको हेल्प करता है, अगर आज वो हेल्प माना हो तो उसकी तो अपनी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। अगर वहाँ का दिफा अमेरिका के जो दफाई निज़ाम है उससे मुंसलिक ना हो तो वो अपना दिफा नहीं कर सकता। तो इसराइल एक मस्नूई रियासत है, इतने वर्षों में भी उसकी अपनी जड़ें कायम नहीं हो सकी। पौधा लग जाए, गलत लग जाए, अगर वो जड़ें ले ले तो दरख्त बनता है, ये वो पौधा नहीं जो दरख्त बन पाएगा। तो ग्रेटर इसराइल का मंसूबा एक ख्वाब तो हो सकता है कि एक दीवाने का ख्वाब हो सकता है, हकीकतें कुछ और हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया जैदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। शमशीर साहब, हमारे पास 2 मिनट का वक्त रह गया है। हिज़्बुल्लाह लबनान के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने अपने खिताब में कहा है कि मसले फलस्तीन को मुजाहमती तहरीकों ने जिंदा रखा है। 1.5 मिनट का वक्त है, इस बारे में आप क्या कहेंगे?
जी बिल्कुल हकीकत है, अगर अगर वहां के फलस्तीन के मजलूम अवाम मुजाहमत अख्तियार ना करते तो ये मुमकिन नहीं था। कितनी पुरानी तहरीक चली आ रही है उनकी और कितने जमाने से वो मजलूम बगैर किसी हथियार के सिर्फ अपने खून की धार की बुनियाद पर लड़ते चले आ रहे हैं वो लोग, और मुजाहमत जारी है। और छोटी सी कौम, छोटे से लोग, और किस तरीके से वो एक ताकतवर हुकूमत के साथ टकरा रहे हैं। यकीनन नसरुल्लाह साहब ने जो कहा है वो 100% सही है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि अगर फिलिस्तीन के अवाम अपने खून के जरिए से मुजाहमत जारी ना रखते तो कब का खत्म कर दिया होता, मलियामेट कर दिया होता इसराइल ने वहां के पूरी मुल्क को, पूरी कौम को बर्बाद करके रख दिया होता है। और इसीलिए तारीख में जिंदा रहती हैं वो कौमें जो अपने खून से अपनी तारीख लिखा करती हैं, और यही फिलिस्तीनी भी कर रहे हैं, और खुदा का शुक्र है कि इस वक्त सारी दुनिया में उनको सपोर्ट मिल रही है। और अब वो इस लड़ाई में तन्हा नहीं है, उनके साथ हिज़्बुल्लाह भी खड़ी है, ईरान भी खड़ा है, दूसरे ममालिक भी खड़े हैं जो खित्ते के हैं, और उसके अलावा बरसगीर के मुसलमान इसराइल के साथ दिलो जान के साथ शामिल हैं, और इसराइल के खिलाफ दिलो जान से खड़े हैं और फिलिस्तीनियों के साथ हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया शकील शमशीर साहब। इसी के साथ हम अली जाफर जैदी साहब के भी शुक्रगुजार हैं और औरिया मकबूल जान साहब के भी। बहरहाल इसमें दोहराए नहीं, जैसा कि शकील शमशीर साहब ने कहा है कि अब फलस्तीनी कौम तन्हा नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया, दुनिया के तमाम मुसलमान, और सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम इंसानियत का दर्द रखने वाले آزادی اور حریت کو پسند کرنے والے، تمام انسانی اقدار پر یقین رکھنے والے سب فلسطینی قوم کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ فلسطین ایک دن اسرائیل کے ناجائز قبضے سے یقیناً آزاد ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔